आकाश मुस्कुराते हुए बोला, लगता है कृष्ण भगवान जी ने अपने मंदिर में एक और जोड़ी बनाकर तैयार कर दी है। सुमित खोया खोया सा बड़बड़ाया, काश हमें भी यहाँ कोई मिल ही जाती तो सही रहता यार। क्योंकि आहान और ध्रुव ने आकाश से कहा था कि अगर उसने समय से शादी नहीं की तो कुछ दिनों में जवान लड़कियां भी उसे अंकल बोलना शुरू कर देंगी। सुमित ने ये बात कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले ली थी, इसलिए वो अब लड़की की तलाश कर रहा था और सोच रहा था कि उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि सुमित दिखने में किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं था, वो बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग था, लेकिन वो इस बात को भी नहीं झुठला सकता था कि उसकी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी बीच अरमान ने आस्था को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आस्था ने अपनी नजरें झुका ली थी। दादाजी बोले, अच्छा बेटा, मैं तो यहां से सीधा घर जा रहा हूं। तुम लोग जानते हो कि मेरे बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब आप लोगों के साथ शॉपिंग पर चल सकूं। तो आप सब लोग यहीं से सीधा शॉपिंग पर निकल जाओ और ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। तुम अरमान के साथ जाओ, ठीक है बेटा? फिर दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, तुम इस शहर में नहीं हो बच्चा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? आस्था ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी गर्दन हिला दी। ध्रुव बोला, डोंट सॉरी दादाजी, मैं आस्था भाभी का ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट मैं अरमान भाई वाली गाड़ी में आगे बैठ जाऊंगा और उनके साथ ही शॉपिंग पर चला जाऊंगा। ध्रुव ने तय किया था कि वे सब अरमान की गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाएंगे और बाकी गार्ड्स वगैरह की वहां कोई जरूरत नहीं है, वे सब संभाल सकते हैं। ध्रुव के ये कहते ही दादाजी घूर कर उसे देखने लगे, मानो वो कहना चाह रहे हों, बेवकूफ, तुझे कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है। लेकिन ध्रुव दादाजी की बातों का मतलब नहीं समझ पाया, ना ही उनकी आंखों के इशारे देख पाया। वो सबसे पहले जाकर अरमान की गाड़ी में आगे की सीट पर बैठ गया। सुमित, आहान और आकाश ने भी अपने सर पर हाथ मार लिया। वे सब दादाजी की आंखों को देख चुके थे, लेकिन अब उनके पास भी अरमान की गाड़ी में बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अरमान की गाड़ी काफी बड़ी थी, जिसमें ऑलरेडी 12 से 13 लोग आराम से आ सकते थे और ये तो केवल 5 ही थे। उन्होंने बीच वाली सीट पर अरमान और आस्था को बैठने के लिए जगह दे दी। उसके ठीक पीछे वाली सीट पर आहान, आकाश और सुमित बैठ गए और आगे वाली सीट पर ध्रुव पहले ही बैठ चुका था। दादाजी अरमान की ओर देखते हुए बोले, बेटा याद रखना, बहू को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए यहां सब कुछ नया है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अरमान मन ही मन में और भी ज्यादा चिढ़ गया। जब से आस्था आई है, उसके दादाजी ने उसके बारे में एक बार भी बात नहीं की थी। वे सिर्फ आस्था के बारे में बात कर रहे थे, उसकी ही फिक्र कर रहे थे। ये बात अरमान को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे अपना गुस्सा कब और कैसे कहाँ निकालना है। अरमान ने कुछ कार्ड्स को दादाजी के साथ सिम्हानिया मेंशन की ओर रवाना कर दिया और खुद अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन आस्था अभी भी बाहर खड़ी थी, किसी ने उसे बैठने के लिए कहा ही नहीं था। वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि इस तरह से वो कैसे बैठ सकती थी? उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कहाँ बैठे, उसे कुछ पता भी नहीं था। ध्रुव ने आस्था को कश्मकश में देख लिया और तुरंत कहा, अरे भाभी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए। फिर वो अरमान की ओर देखकर बोला, अरमान भाई, भाभी के लिए दरवाजा खोल दीजिए, शायद उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोलना नहीं आता है। ध्रुव के ये कहते ही अरमान ने खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखा, मानो वो अभी और इसी वक्त उसे अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर डालेगा। लेकिन ध्रुव समझ चुका था कि अरमान उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गया है, इसीलिए उसने इस तरह से नाटक किया मानो कि उसने अरमान के गुस्से पर ध्यान ही ना दिया हो। अरमान इरिटेट हो चुका था। फिलहाल उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने अपने सभी गार्ड्स को वापस भेज दिया था। अरमान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आस्था का गला सूखने लगा था, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर समेत 6 मर्द उस गाड़ी में मौजूद थे और आस्था अकेली थी। उसे थोड़ा सा असहज लग रहा था। आते समय तो वो दादाजी के साथ आ गई थी, लेकिन अब इतने सारे आदमियों के बीच उसका बैठना बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी अरमान ने गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, क्या सारा दिन तुम्हें यहीं वेस्ट करना है? जल्दी फटाफट बैठो, तुम्हारे चक्कर में वैसे भी मेरा आज का दिन बर्बाद हो चुका है, अरमान ने बड़े ही गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था। लेकिन उसने अपनी आवाज को सामान्य ही रखा था। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके भाइयों के सामने वो आस्था को ज्यादा डांटे, ताकि कभी वो उसकी शिकायत दादाजी से कर दे। वो जानता था कि उसके दादाजी उनसे हर बात कैसे निकलवा लेते थे, आखिरकार वो उसके परदादा हैं। आहान पीछे वाली सीट से बोला, भाभी आप क्यों बाहर खड़ी हैं? प्लीज बैठ जाइए, चलिए चलते हैं। आहान के ये कहते ही आस्था ने हल्की सी मुस्कान की और जल्दी से वो अरमान से पूरे 3 सीट की जगह छोड़कर बिल्कुल खिड़की से सटकर बैठ गई। अरमान ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और मन ही मन में सोचा, मुझसे डर के तो इस तरह से बैठी है जैसे मैं इसे अभी खा जाऊंगा। जल्दी ही गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। आस्था चुपचाप खामोशी से सामने की ओर देख रही थी। पूरी गाड़ी में सन्नाटा सा पसरा हुआ था, जिससे आहान और ध्रुव दोनों ही असहज हो गए थे। आकाश और सुमित शांत स्वभाव के थे, लेकिन ध्रुव और आहान थोड़े चुलबुले थे। आहान ने पीछे बैठे बैठे ध्रुव को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, यार हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या किसी की मैयत में जा रहे हैं? भाभी के साथ पहली बार गाड़ी में इस तरह से जा रहे हैं और कितना अजीब सा लग रहा है। ध्रुव ने टेक्स्ट किया, तुम फिक्र मत करो, मैं आगे इसीलिए बैठा हूँ ताकि थोड़ा सा माहौल ठीक कर सकूं, और वैसे भी डेविल किंग का गुस्सा तो तू जानता है ना, लेकिन मुझे पता है कि आस्था भाभी के सामने वो अपने असली अवतार में नहीं आएंगे। ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर प्लेलिस्ट ऑन कर दी और जल्दी ही गाड़ी में एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं, सुहाना सफर, ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुम गुम कहीं रुमझुम कि जैसे नाचे जमी, सुहाना सफर, ये कौरी नदियों का चलना उछलकर कि जैसे अलहर चले पी से मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे निखरे हैं हर कहीं, सुहाना सफर, हो वो आसमां झुक रहा है जमीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर। गाना बजते ही ध्रुव अपने दोनों हाथों को उठाकर एंजॉय करने लगा और साथ ही वो भी गाना गाने लगा। पीछे से आहान भी शुरू हो गया, वो एंजॉय करने लगा, लेकिन अरमान गुस्से से खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगा। अचानक डांस करते करते ध्रुव को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। ध्रुव हैरान हो गया, इतनी एयर कंडीशनर गाड़ी में भला इस तरह से पसीना क्यों निकल रहा है? उसने इधर उधर देखा, फिर पलटकर अरमान की ओर देखा और अरमान की आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं। ध्रुव पूरी तरह से कांप गया, उसने फटाफट से गाना बदल दिया क्योंकि उसने सोचा कि ये गाना शायद आस्था और अरमान पर फिट बैठ रहा है, इसी वजह से अरमान थोड़ा सा गुस्से में है। लेकिन तभी आस्था, जो गाना सुनकर आंखें बंद करके एंजॉय कर रही थी, अचानक गाना बंद होने पर सामने वाली सीट की ओर देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती एक और गाना बजने लगा, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला, ये तेरी आंखें छलकती गालों से लाली, बड़ी तू शर्मो हया वाली, होठ तेरे पूजा के फूल, फूल की नाजुक तू डाली, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, किसी के प्यारे प्यारे बाल, किसी की प्यारी प्यारी चाल,
तू सर से पांव तलक सुंदर, तू है कुदरत का कोई कमाल, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। ये गाना बजते ही अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। ध्रुव अपनी दांतों से हाथ के नाखून काटने लगा और मन ही मन में सोचने लगा, एफएम वालों को आज यही सब गाने बजाने जरूरी थे क्या? ऐसा लग रहा है कि सारे गाने पीछे बैठे इस एंग्री यंग मैन पर फिट बैठ रहे हैं। ध्रुव चिढ़कर सोचने लगा, एक बार बस आज इस गाड़ी से उतर जाऊं, उसके बाद इस गाड़ी में मैं सिर्फ इंग्लिश गानों की ही प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा ताकि उनका मतलब किसी को समझ में भी ना आए। आहान ने जल्दी ही ध्रुव को मैसेज कर दिया, क्या कर रहा है भाई, तू देख रहा है ना इस गाड़ी में एयर कंडीशनर होते हुए भी हम सबको पसीना आ रहा है, इस बात का मतलब समझ रहा है ना तू? आहान की ये कहते ही ध्रुव ने आगे बढ़कर फटाफट से गाना बंद कर दिया। आस्था उदास हो गई क्योंकि उसे गाने सुनना बहुत पसंद था। अगर गली मोहल्ले में किसी की बारात भी आ जाती थी, आस्था सबसे पहले डांस करने के लिए पहुंच जाती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसकी सारी मौज मस्ती छूट रही हो। आज गाने बजे तो उसका दिल किया कि यहीं पर उठकर नाचना शुरू कर दें, लेकिन उसने अपने बगल में बैठे अरमान को देखा जो उसे घूर रहा था और उसने अपना मन मार लिया और नाचने का इरादा छोड़ दिया। वे लोग शहर के सबसे बड़े मॉल फीनिक्स मार्केट सिटी के सामने खड़े हुए थे। आस्था जैसे कार से नीचे उतरी और उसने उस मॉल की ओर देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। वो पहले मॉल में आई थी, लेकिन उससे पहले वो अपनी मामी के साथ प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए छोटे मॉल में आई थी जो उनके बजट के अनुसार थे, लेकिन ये सबसे बड़ा मॉल था और मॉल को देखकर आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी क्योंकि इससे पहले वो इस मॉल में नहीं गई थी। ऊपर से उस मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे जो कि चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा डर रही थी, लेकिन वो अपने डर को इन सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो थोड़ी असहज भी महसूस कर रही थी क्योंकि इतने सारे आदमियों में वो अकेली लड़की थी। क्या आस्था के दिल में कभी अरमान के लिए प्यार जन्म ले पाएगा और क्या अरमान आस्था को दिल से अपना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों।